میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ زمزم نگر حیدرآباد آفندی ٹاؤن میں اب تمام اسلامی بھائیوں کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بھلی کری آیا، اور اللہ آپ کا اور ہم سب کا آنا قبول فرمائے اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ واقعہ یہ ایک رئیس مالدار شخص کا ہے جس نے دنیا کے کئی ملکوں میں اپنے کاروبار کو پھیلایا ہوا تھا۔ ایک دن دنیا کے کسی ایئرپورٹ پر بیٹھا اپنے کاروبار کا تصور کر رہا تھا کہ میرا کاروبار دنیا کے کتنے ملکوں کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ فلائٹ کا انتظار کر رہا تھا کہ اس کی فلائٹ کا ٹائم ہونے والا تھا، اور اپنی زندگی کے وہ ایام کے جوانی یہاں دیکھی، تو شادی ہوئی تو ایک بیٹا ہوا، برسوں گزر گئے بیٹے کو دیکھا نہیں ہے، کاروبار کے لیے دنیا میں گھوم رہا ہوں، آسائشیں، گھر بار، گاڑیاں، نوکر چاکر، اور اپنی زندگی کے یہ خوشگوار، اس کے نزدیک بڑے خوشگوار لمحات تھے، اور اس کے نزدیک یہ بڑی کامیابی کی زندگی اس نے گزاری ہوئی تھی۔ ابھی فلائٹ اناؤنس نہیں ہوئی تھی کہ موبائل کی گھنٹی بجی اور سامنے سے اس کے بھائی کا فون تھا۔ بھائی کی آواز بھرائی ہوئی تھی، گھبرایا ہوا تھا، اور کہا بھائی جان آپ کہیں بھی ہو جلد آ جاؤ، ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی بیوی سے آخری ملاقات کر لو۔ ایک شخص اتنے تصورات میں گھوم ہے، اچانک اس کو فون آ جائے کہ آپ مطلب کہ جلدی آ جاؤ اور اپنی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی بیوی کا آخری بار اس کو دیکھ لو وغیرہ وغیرہ، تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ کہتے نہیں وہ اچانک ایک آدمی شیشہ دیکھ رہا ہو، وہ شیشے میں اپنے آپ کو بڑا خوبصورت حسین و جمیل اور بڑا ٹپ ٹاپ دیکھ رہا ہو، اچانک کوئی پیچھے سے پتھر مارے اور شیشہ اس کی آنکھوں کے سامنے ٹھا کر کے ٹوٹے، شور بھی ہوگا اور گھبرا کیسا جائے گا وہ، اس کا تو شیشہ جیسا تصورات کا وہ چکنا چور ہو گیا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے اپنی فلائٹ چینج کروائی اور اپنے شہر کی طرف اڑ گیا۔ بڑا گھبرایا ہوا راستے بھر اڑتا رہا، جیسے ہی اپنے شہر پہنچا تو باہر نکلا تو اس کے بھائی گاڑی لے کے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ بھائی کے ساتھ بیٹھا تو بھائی کو کہنے لگا بھائی جان میرا بیٹا کہاں ہے؟ کہا چلو بتاتا ہوں۔ اب گاڑی جب چلی نا ایئرپورٹ سے تو وہ کار جو تھی وہ اس سیٹھ کے گھر پر نہیں جا رہی تھی، وہ کار بھائی اپنے گھر لے کے جا رہا تھا۔ اس نے کہا بھائی کہاں لے کے جا رہے ہو، مجھے میرے گھر لے جاؤ۔ کہا بتاتا ہوں۔ اور وہ بتاتا ہوں بھی کر رہا ہے تو اس کو تشویش بھی بڑھ رہی ہے بھائی کو کہ مسئلہ کیا ہے۔ گھر گئے، بیٹھ کے اس کو پانی پلایا، کہا مسئلہ کیا ہے، میرا بیٹا کہاں ہے؟ میرا بیٹا تو جوان ہو گیا ہوگا نا، 18-20 سال کا اس کا بیٹا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کا بیٹا جیل میں ہے۔ کیا ہوا، میری بیوی کہاں ہے؟ کہا آپ کو آنے میں دیر ہو گئی، آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا، ہم نے اس کی تدفین بھی کر دی ہے۔ میری بیوی کا انتقال ہو گیا، میرا بیٹا لاک اپ میں ہے، مجھے تم نے اچانک بلا لیا ہے، ماجرا کیا ہے، میٹر کیا ہے، پرابلم کیا ہے، ہوا کیا ہے، کچھ بتاؤ بھی تو صحیح۔ کہ بھائی جان آپ تو کاروبار کے چکر میں باہر نکل گئے اور پیچھے آپ کا بیٹا تھوڑا بڑا ہوا और आप वहां से पैसे भेज तो देते थे, लेकिन आपका बेटा बुरी सोहबत में बैठ गया और बुरी सोहबत की वजह से आपका बेटा नशे का आदी हो गया। आहिस्ता आहिस्ता वो नशा उसका बढ़ता चला गया। इसकी माँ को पता ना था, लेकिन चूंकि वो आपके पैसे तो आ ही रहे थे तो बेटे को भी उसकी खर्ची मिल रही थी। वो बेटा आसाइश के दिन गुजारा तो उसकी मौज लगी हुई थी कि बाप पैसे भेज रहा है और मैं खर्च कर रहा हूं। जब उसकी माँ को पता चला कि इसका बेटा नशे का आदि हो गया है, तो उसकी माँ ने उससे रकम देनी बंद कर दी कि मैं तुझे रकम नहीं दूंगी, बदबख्त तू नशा करता है। अब इसको पूरी इसका दिमाग जो है ना खुश्क हो चुका था, दिमाग घूम चुका था, हालत तो उसकी बड़ी बुरी थी, हाथ पैर कांप रहे थे और माँ को कह रहा था माँ पैसे दे। माँ समझ गई कि मैं तुझे पैसे दूंगी तो तू फिर नशा करेगा, मैं तुझे पैसे नहीं देती। अब उसकी ने माँ की हो गई लड़ाई, माँ चीखती चिल्लाती और वो माँ के सामने चीखता चिल्लाता। अब किताबों में लिखा है कि पता नहीं क्या हुआ कि इस नौजवान का दिमाग जो था ना वो खराब हो गया। इसकी आंखों के सामने जो ना एक अजीब गंदा सा मंजर आ गया, अजीब गंदा सा मंजर आ गया कि इसकी माँ किसी गैर मर्द के साथ गंदे ताल्लुकात रखे हुए, अजीब उसके दिमाग के अंदर एक गंदगी आ गई, गंदा तस्वर उसके दिमाग में ऐसे ही जम गया। वो कहा माँ मुझे पता है कि तेरे किन किन मर्दों के साथ ताल्लुकात है, तो पैसे दे वरना मैं अब्बू को बता दूंगा कि माँ ऐसी इस तरह तुम्हारे पीछे हरकतें करती है। अब माँ को पता चला, माँ ने जब ये सुना कि मेरा बेटा मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहा है, उसका दिमाग होंगे, उसने माँ ने तो देश को दो चार हाथ धक्के मारे। माँ जज्बाती हो गई कि बेगैरत तो अपनी माँ के ऊपर इल्जाम लगा रहा है, माँ पर तोहमत लगा रहा है, माँ पर बोहतान लगा रहा है। वो माँ उसको धक्के दे, माँ उसको मारे, सामने से वो और गुस्से में आ जाए। माँ जज्बाती हो गई थी, माँ भी यूं समझो कि वो बाहर आ गई अब अपने होश से, अब उस माँ को भी इतना होश नहीं रहा। अब लड़का जो था वो जज्बाती हो गया, इसने भी माँ को धक्का मारा, माँ को थप्पड़े मारी, माँ को घूसे मारे और दोनों माँ बेटों में हो गई लड़ाई, चीखो पुकार घर में तमाशा मचा। ऐसे में वो दोरा लड़का किचन में गया और चाकू लिया, चाकू लेकर इसने माँ पर देव दो चार वार कर दिए। माँ चीख रही है, वो खून पर खून बहे जा रहा है अपनी माँ का, हाथ पर छुरियां मार रहा है, मुंह पर छुरियां मार रहा है, माँ भागे तो कमर पर छुरी मार रहा है, माँ पैसे दे, माँ पैसे दे, माँ पैसे दे, चीखता रहा चीखता रहा चीखता रहा, हत्ता के इसकी माँ खून में लतपत हो गए, तड़प तड़प के मर गई। चीखो पुकार सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए कि घर में तमाशा क्या है। देखा तो लड़के के हाथ में चाकू, लड़के के कपड़े खून से भरे हुए, माँ खून से लतपत हो रही है, माँ जमीन पर तड़पते तड़पते, लोगों ने देखा दम तोड़ दिया माँ ने। लोग तो हैरान रह गए कि ये क्या हो गया कि नौजवान लड़के ने, माँ ने इतना पाला पोसा बड़ा किया, इतनी खिदमत की, इतनी कुर्बानियां दी और इस नौजवान ने माँ का खून कर दिया। उन्होंने पुलिस को फोन किया, पुलिस आई और इस नौजवान को पकड़ के ले गई, उसके ऊपर केस दायर कर दिया, FIR कट गई, 302 का मुकदमा चल रहा है। हो सकता है कि तुम्हारे बेटे को अब किसी वक्त भी सजाए मौत हो जाए और तुम्हारा बेटा फांसी पर लगा दिया जाए, जो भी इसका अंजाम होगा। और वो सारी कहानियां सुनकर नो वो जो रईस आदमी था पैसे वाला, वो तो बस जिंदा लाश हो गया। कई बरसों के बाद घर आया, ना बीवी को देखना मिला और बच्चा भी है तो जेल के अंदर, कत्ल का इस मुकदमा है और कत्ल किया उसने अपनी ही माँ का। बोला मुझे बेटे के पास ले जाओ। बेटे के से मिलने के लिए गया तो बेटा, तो बरसों के बाद नौजवान बेटे ने अपने बाप को देखा, बाप ने अपने नौजवान बेटे को देखा, बेटा सलाख होके उस तरफ, बाप इस तरफ, बाप की आंखों में खून उतरा हुआ था कि ये मेरा बेटा है कि अपनी माँ का कातिल है, मेरी बीवी का कातिल है। बेटा रो रहा है, वो भी रो रहा है, बात नहीं कर सके, दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं कर सके, देखते रहे रोते रहे। जैसे बाप जाने लगा, बेटे ने आवाज दी, अब्बा जान एक बात का जवाब तो दो, मानता हूं कि मैं कसूरवार हूं, मैंने गलती की है, मैंने अपनी माँ का खून किया है, मैं कातिल हूं, मैं गंदा हूं, मैं बुरा हूं, मगर ये मेरे बाप ये बता कि इस नतीजे पर पहुंचने में तुम्हारा कोई किरदार है या नहीं है, तुम कहां थे जब मैं बचपन में बुरे दोस्तों की सोबत में गया, उस वक्त मेरा बाप कहां था जो मुझे डांट कर पकड़ कर मार कर अपने घर में ले आता। तुम तो पैसे कमाने में लगे हुए थे, तुम्हें तो पैसे की धुन सवार थी, तुमने देखा ही नहीं कि बेटा कब किधर कैसे बड़ा हो गया, कब बुरी सोबतों में चला गया और आज मैं इस अंजाम को पहुंच गया। मैं इस अंजाम में पहुंचा कसूरवार कौन? ये चीखता रहा चिल्लाता रहा, बाप चला गया। किताबों में लिखा है कि अपनी सारी दौलत उसने राय खुदा में खैरात कर दी, अपना बिजनेस उसने वाइंड अप कर दिया और मस्जिद के कोना पकड़ के बैठ गया। अरब दुनिया का वाकिया है। इस नौजवान की तबाही जो हुई, इससे कबल मैं इसके बाप के बारे में बयान करूंगा कि नॉर्मली हम अपने किसी मकसद में इतने गुम हो जाते हैं कि पीछे भूल जाते हैं कि पीछे हमारा लॉस क्या हो रहा है। मिसाल के तौर पर आप स्टूडेंट हैं, आपके ऊपर एक धुन है कि मैं पढ़ूं। मिसाल देता हूं, कई ऐसे नौजवान होंगे, ऐसे पढ़ने वाले होंगे जो दूसरे शहरों से आकर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में रहते होंगे, वो अपने माँ बाप को भूल चुके होंगे। माँ बाप दुआएं दे रहे होंगे, माँ बाप पैसे भेज रहे होंगे, मगर इनके दिमाग और दिन में भी नहीं होगा कि माँ बाप का भी कोई हक है, माँ बाप की भी कोई खिदमत है, माँ बाप का कोई अदब है, माँ बाप का भी कोई एहतराम है, माँ बाप के पास भी जाना है, माँ बाप के हाथ चूमने हैं, माँ बाप की खिदमत करनी है, माँ बाप के आगे नजर झुकानी है, माँ बाप को खुश करना है, माँ बाप को मतलब कि इनके दिल से दुआएं लेनी है। इनको लगेगा स्टूडेंट को कि ये कोई मेरे लिए कोई कंपल्सरी चीज है ही नहीं। बस क्यों नहीं कंपल्सरी चीज? ठीक है, वालिदैन ने आपको एक मकसद के लिए किसी तरफ भेजा है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप मतलब के माँ बाप को भूल जाएंगे। स्टूडेंट में एक प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट अपने माँ बाप को भूल जाता है, स्पेशली वो स्टूडेंट कि जो हॉस्टल में रहता है, यानी कि जो घर नहीं जाते। जब घर जाते हैं तब भी ऐसे माँ बाप के पास ऐसे जाते हैं कि जैसे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं माँ बाप के पास जाकर, हालांकि माँ बाप कता नजर इससे कि आप दीन पढ़ रहे हैं कि दुनिया पढ़ रहे हैं। मैं इसके ऊपर अभी डिस्कशन नहीं कर रहा, क्योंकि दुनियावी सेक्टर काफी ऐसे हैं, एजुकेशन सेक्टर, जिस पर शरई कलाम है, ये मैं आपको बयान कर दूं। देखिए, मैं इस वक्त इस टॉपिक पर आपसे डिस्कस नहीं कर रहा, ये भी टॉपिक है, मगर मेरा टॉपिक ये है, हाँ आप दीन पढ़ने आए या दुनिया पढ़ने, आप मदरसे में पढ़ रहे हैं या कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आपके माँ बाप जिंदा हैं, आप अपने माँ बाप को याद ही नहीं कर रहे, आप अपने माँ बाप को फोन ही नहीं कर रहे, आपको पता ही नहीं है कि माँ बाप की ज्यारत अगर रहमत से उसको देखो तो अल्लाह ताला एक हज का सवाब अता फरमाता है। माँ बाप की खिदमत करनी है, जिससे माँ के कदमों को चूमा, इससे जन्नत की चौखट को चूमा। आपको पता ही नहीं है कि बाप राजी रब राजी, रब बाप नारा रब नाराज। आप जब फोन पर बात करते अपने बाप से तो ऐसे लगते जैसे सामने मुलाजिम से बात कर रहे हैं, उसे पैसे मांगते तो ऐसे मांगते जैसे आपके बाप ने आपसे कर्जा मांगा हुआ। तो माँ बाप ये आपके मेरे मुलाजिम नहीं है, माँ बाप आपके मेरे नौकर नहीं है, माँ बाप ने कोई आपका मेरा ठेका नहीं लिया हुआ है। हम लोग बालिग हो गए ना, माँ बाप की जिम्मेदारी तकरीबन खत्म हो चुकी है, लेकिन आपकी तालीम और आपके पांव पर खड़े होने तक, इवन कि आपके जॉब लग जाने तक, आपका बाप खुद को बेच कर भी आपको पाल रहा है। पता है आपको, एक बुजुर्ग फरमाते हैं मेरा बेटा मेरा बड़ा अदब करता है। बोला कैसे अदब करता है? कहा जब मैं दीन को कहीं जाता हूं तो बेटा अदब से मेरे पीछे चलता है, और मैं रात को कहीं जाता हूं तो मेरा बेटा मेरे आगे चलता है कि कोई जानवर मुझे नुकसान ना पहुंचा दे। यानी ये आगे पीछे मेरी हिफाजत के लिए, मेरे अदब के लिए मेरा बेटा है। औलाद ऐसी होती है, अगर आज तक अपने वालिदैन के साथ बदतमीजी की है तो आप ये नियत कर लें, बल्कि नियत पक्की नियत करें, आप अपने इज्तिमा खत्म होते अपने माँ बाप को फोन करके माफी मांगनी है, मांगेंगे। अच्छा, बदतमीजी नहीं की है फिर भी माफी मांगेंगे तो माँ बाप खुश होंगे। हो सकता है कहेंगे कि क्या हुआ, क्यों माफी मांग रहे हो? क्या बात, माफी मांग रहा हूं माँ, माफ कर दो। हक तो अदा हो ही नहीं सकता ना। इवन कि अगर औलाद अपने बदन की जो जिल्द है ना, अगर उसको उधेड़ कर उसके जूते बनाकर भी अगर माँ बाप को पहना देना, तब भी माँ बाप का हक अदा नहीं हो सकता, माँ बाप का हक अदा नहीं हो सकता, वालिदैन का कभी हक अदा हो ही नहीं सकता। अब अल्लाह करे कि ऐसे लेक्चर हमारे इस तालीमी इदारों में आ जाए। नहीं है, मैं नहीं कहता कि माँ बाप के बारे में कोई तस्करा नहीं होता माँ बाप के बारे में, लेकिन प्रॉपरली नहीं है कि बच्चा जब फारिग हो तो उसके दिल में माँ बाप की मोहब्बत पैदा। ये दीन की खूबसूरती है कि हमें जो सिखाया जाता है कुरान करीम की जब बात सिखाई जाती है तो वबिल वालिदैन एहसाना, और अपने वालिदैन का एहसान मानो, इनके साथ भलाई करो। हदीसों में इसके फजाइल मौजूद है, हदीसों में इसकी अहमियत मौजूद है, जो अमूमन हमारे तालीमी इदारों में हमें पढ़ाया नहीं जा रहा, और इस तरफ हमारी डायरेक्शन ही नहीं बनाई जा रही है। और माँ बाप भेज रहे हैं, मैं माँ बाप से भी कंप्लेन है कि आप पता नहीं कहाँ पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं। आप समझते हैं ये औलाद आपकी हो जाएगी, होगी तो तब जब वो इस तरह की चीजें सीखेगी, सुनेगी, समझेगी। हो नहीं रहा ऐसा। आपके तालीमी इदारों में अच्छी सोबत नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। जरूरी है कि हम अगर नौजवान है जवान है तो हम इबादत ना करें, नेकी ना करें, नेक सोबत ना लें, यही इसी तरह बुरे और बुराई की तरफ बढ़ते चले जाएं। अल्लाह ताला हमें जवानी में भी इबादत की तौफीक अता फरमाए कि जवानी की इबादत तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक दो चीजें सुनाता हूँ, सुनिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितनी प्यारी बात इरशाद फरमाई। आप फरमाते अपनी जवानी में इबादत करने वाले नौजवान को बुढ़ापे में इबादत करने वाले बूढ़े पर ऐसी ही फजीलत हासिल है जैसे मुरसलीन को तमाम नबियों पर। जवानी में इबादत। एक और हदीस सुनिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस नौजवान ने लज्जत दुनिया और उसके ऐश व इश्रत को छोड़ दिया, जिस नौजवान ने लज्जत दुनिया और इसके ऐश और इशरत को छोड़ दिया और अपनी जवानी में अल्लाह की इताअत की जानिब पेश कदमी की, आगे बढ़ा, तो अल्लाह ताला उस खुश नसीब को 72 सिद्दीकीन के बराबर सवाब अता फरमाता है। 72 सिद्दीकीन के बराबर सवाब। ये नौजवानों के लिए, जवानों के लिए। जवानी दीवानी होती है ना, दीवानी होती है, मस्तानी होती है, पता नहीं क्या क्या होती है, क्यों होती है भैया ये जवानी? जवानी तो मोहम्मद बिन कासिम पर भी आई थी, हैं? जवानी तो अली अकबर पर भी आई थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे आका ज़ादे हज़रत सैयदना अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हम शक्ल मुस्तफ़ात है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। करबला का मैदान है, सामने यजीद पलीद का लश्कर खून का प्यासा है, और ये मेरा खुद मेरे आका भी है हजरत सैयदना अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला इमाम हुसैन के जवान बेटे। इन पर भी तो जवानी आई थी। इन्होंने तो अब्बा जान को नहीं कहा, अब्बा जान मैं चला जाऊं, मैं मदीने वापस चला जाऊं, हालांकि 10 मुहर्रमुल हराम की फजर की नमाज के बाद, 10 मुहर्रमुल हराम फजर की नमाज के बाद मेरे आका मौला अली शेर खुदा करमल्ला तला वजुल करीम के शहजादे, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे नवासे, जिसे प्यारे मुस्तफा चूमा करते थे और फरमाया करते थे ये मेरा फूल है, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूं। इनके वालिद के लिए फरमाते अली मुझसे है मैं अली से हूं, अली जिसका मौला है मैं भी उसका मौला हूं। ये मौला अली की शान है करमल्ला तला वजहुल करीम। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु करबला के मैदान में 3 दिन के भूखे प्यासे, नहर फुरात बह रहा है, पानी बह रहा है, कुर्बान जाऊं आशिक अहले बैत मेरे अमीले सुन्नत पर, ये गए थे करबला, मेरे अमीले सुन्नत पीरो मुर्शिद करबला गए थे, नहर फुरात को देखा, नहर फुरात का पानी ना पिया, और ये कहते वापस आए कि जिस पानी को हुसैन ने नहीं पिया मैं क्यों पीऊं? है ऐसा को आशिक है तो लाओ आज के इस दौर के अंदर, अहले बैत का ऐसा गुलाम है तो लाओ इस दौर के अंदर, जैसी मदनी सोच वाला लाओ इस दौर के अंदर, तभी कहता हूं जैसे मेरे अत्तार है ऐसा नहीं कोई। कि अहले बैत की मोहब्बत है ना, वो प्यासे रहो तो याद करो प्यास हुसैन की, कोई कहता पानी पियो तो याद करो प्यास हुसैन की, पानी पी के हुसैन की प्यास याद आएगी? मुर्शिद फरमाते प्यासे रहो और याद करो प्यास हुसैन की। तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने 3 दिन के भूखे प्यासे, आपके साथ जो रफ़ाका थे 3 दिन के भूखे प्यासे, आपके साथ जो ख़वातीन थी पर्दा नशीन 3 दिन की भूखी प्यासी, और आप अपने रफ़ाका को जमा करते जिसमें नौजवान जवान हैं, भांजे भतीजे हैं, बेटे हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, इनमें बड़ी एक तादाद थी जिनकी उम्रें थी, जवानियां थी। मेरे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने फजर की नमाज अदा करते बाद जमात अदा हुई, करबला के मैदान में जमात के साथ नमाजें पढ़ी गई हैं, और वहां पर मेरे आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन्हें जमा करके ये फरमाते हैं, सुनो ये मेरे खून के प्यासे हैं तुम्हारे नहीं, ये मेरे खून के प्यासे हैं तुम्हारे नहीं। और क्यों खून के प्यासे थे? इक्तदार ने खून का प्यासा बनाया था, यजीद पलीद के इक्तदार की हवस ने, प्यारे सहन भाई एक हवस है ना, इक्तदार की हवस, मनसब की हवस, ओधे की हवस, ये इंसान को दरिंदा बना देती है कभी कभी। ये चीजें सबक आमोज है, ये जो मैं आपको बयान सबक आमोज है, मैं जिसे एक इस्लामिक हिस्ट्री और इस्लामिक वाकयात ही के तौर पर ना लिया जाए, इसमें सबक है। नमरूद की तबाही में सबक है, फिरौन की तबाही में सबक है, कारून की तबाही में सबक है, कौम आद की तबाही में सबक है, कौम समूद की तबाही में सबक है, इन सबकी तबाहियों में सबक छुपे हुए हैं। इसी तरह यजीद वलीद ने अपने इक्तदार के लिए जो तबाही मचाई, इसमें सबक है कि इक्तदार इंसान को ऐसा अंधा कर देता है कि वो अहले बैत या तहार के खून से भी हाथ रंगने में आर महसूस नहीं करता। बदबख्ती है ये, यजीद बदबख्त था। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ये मेरे खून के प्यासे हैं, तुम्हारे नहीं, तुम चले जाओ। क्या जवाब देते हैं? चले जाते हैं कि ठीक है इमाम हुसैन आप फरमाते हैं तुम चले जाते हैं। नहीं, क्या खूब जवाब दिया। एक ने कहा कि ए मेरे आका, आपके बगैर भी जीने का कोई लुत्फ होगा? मेरे आका, आपके बगैर हम कैसे जिएंगे? आपके बगैर नहीं जीना, हम तो आप पर अपनी जान कुर्बान करेंगे। एक ने जवाब दिया, मेरे आका आप जाने की बात कर रहे हैं, अगर हम आपको छोड़कर मदीने चले गए और हमसे पूछा गया कि बताओ हुसैन को किस हाल में छोड़कर आए हो, हम क्या जवाब देंगे? ना ना, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, आप पर अपनी जाने कुर्बान करेंगे। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मैंने आज, ये कोई मुहर्रम उल हराम का महीना नहीं है और ये जरूरी भी नहीं है कि मैं आका इमाम हुसैन का तस्करा मुहर्रम उल हराम में ही करूं। मेरे आका की याद हर वक्त हर घड़ी एक आशी के अहले बैत के दिल में होनी चाहिए, उसके दिलो दिमाग में होनी चाहिए। नौजवान को कभी भी अली अकबर की शहादत को भूलना नहीं चाहिए। ये प्यासे थे, लड़ते लड़ते दोबारा आते इमाम हुसैन की बारगाह में और इमाम हुसैन अपनी सूखी जबान अपने बेटे के मुंह में दाखिल फरमाते हैं और आपकी आंखों के सामने आपका जवान बेटा जामे शहादत नोश करते हैं। इन पर जवानी नहीं आई थी? हजरत इमाम कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर जवानी नहीं आई थी? इन पर भी जवानी आती है, मगर इन्होंने अपनी दीन के लिए, आका के दीन के लिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला के दीन के लिए अपनी जाने कुर्बान की। हम भी अहले बैत से मोहब्बत करते, करबला वालों से हम भी मोहब्बत करते, हमारे भी दिल में कभी कभी ये तमन्ना होती है, काश कि उस घड़ी में भी मेरे आका इमाम हुसैन के साथ करबला के मैदान में होता और इमाम हुसैन के साथ होता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और काश इन पर मैं और मेरी नस्लें, मेरी औलाद इन सब पर कुर्बान हो गई होती। काश, मगर करे क्या नसीब में तो ये नाम मुरादी के दिन लिखे थे। क्या यादियां थी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रुफका के, इन पर जवानियां नहीं आई थी? क्या साहबा करम जवान नहीं थे? क्या बदर में साहबा करम जवान नहीं थे? क्या ओहद में साहबा करम जवान नहीं थे? क्या तबूक में साहबा करम जवान नहीं थे? हजरत हंजला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शादी की पहली रात गए और शहीद हो गए, क्या ये जवान ना थे? इन पर जवानियां नहीं आई थी? क्या जवानी आप पर मुझ पर ही आई है और हमने जवानी का नाम कर दिया? जवानी मस्तानी होती है, जवानी दीवानी होती है। हाँ, अगर जवानी दीवानी होती है तो इस जवानी की दीवानगी तब कबूल है कि ये दीवानगी में अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर अपनी जान कुर्बान कर दे, तब कहेंगे हाँ दीवानगी थी। मगर यहां कहां है? यहां तो अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेने की फुर्सत नहीं है, बदकिस्मती के साथ हमारे नौजवानों को। 72 सिद्दीकीन के बराबर सवाब देता है अल्लाह ताला उस नौजवान को जो अपनी इबादत, अपनी नफ्स को, अपनी ख्वाहिशात को मारता है और अल्लाह की इबादत की तरफ बढ़ता है। अल्लाह उस नौजवान को 72 सिद्दीकीन के बराबर सवाब देता है। सिद्दीक ये औलिया कराम की सबसे बड़ी बड़ा मकाम है, सबसे बड़ा मकाम है सिद्दीक। ये हाल है और हमारा हाल ही बुरा है। हमें तो बस अजीब हालत है और इस बदकिस्मती का हमारे इदारों का हाल। अरे खुदा के बंदो, मैं जिन नौजवानों की आपको बातें सुना रहा हूं, ये अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर कुर्बान होते थे, दीन के नाम पर कुर्बान होते थे। महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीन, दीन इस्लाम, उसका झंडा नीचे कैसे आ सकता है? अपने कटे हुए बाजुओं से झंडा पकड़ने वाले थे ये लोग। लेकिन आज वो कौम जो कल तक खेलती थी शमशीरों के साथ, वो कौम जो कल तक खेलती थी शमशीरों के साथ, सिनेमा देखती है आज हमशीरों के साथ। इससे कैसे तवक्को रखी जाएगी? ये कैसे अपनी मूल कौम मिल्लत दीन इस्लाम की नौजवान कैसे करेगा? नशे में, शराब में, जुए में, औरतों के चक्कर में ये लड़खड़ाता कदम, अरे क्या अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, कौम मिल्लत और इस्लाम और दीन के लिए खड़ा रहेगा? इसको तो खड़ा रखने के लिए बैसाखी भी काफी नहीं है, सिर्फ बातें यूं कर, अरे यूं क्या कर दोगे, अपनी नफ्स को काबू नहीं कर सकते, चलो बंदे को काबू करने के लिए। ये हमारा हाल है, अजीब हाल है हमारा, हमारा हाल बेहाल है, वो हाल ही नहीं है। हमारी जवानियां अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानियों में गुजर रही हैं, अय्याशियों को ढूंढते हैं, फंक्शन को ढूंढते हैं, और बदकिस्मती के साथ कॉलेज यूनिवर्सिटीज के स्कूलों के अंदर पढ़ने वाले इस्लाम भाइयों, स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करता हूं उन आशिकाने रसूल से जो इन तालीमी इदारों की एडमिनिस्ट्रेशन है, उन आशिकाने रसूल से जो अथॉरिटीज है, उनसे मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अपने इदारों में बसने वाले मुसलमानों को गैर मुस्लिमों के त्योहारों से बचाओ। आज आपके तालीमी इदारों में गैर मुस्लिमों के त्योहार बाकायदा इश्तिहार और दावत नामों के साथ आपको बुलाया जा रहा है। अगर मैं गलत कह रहा तो मुझे कहिए, क्या ऐसा नहीं है? क्या ये पहले था? नहीं है, ये हमारे त्योहार नहीं है, गैर मुस्लिमों के त्योहार हैं, नॉन मुस्लिम्स के त्योहार हैं, हमारे ये त्योहार नहीं है, हमारी एक्टिविटीज नहीं है, हमारे अय्याम नहीं है, हमारे दिन रात नहीं है। और इनमें मुब्तला होने वाला हराम में भी पड़ सकता है और कुफर में भी पड़ सकता है। अपने ईमान को बचाओ, कहां भागे जा रहे हो, कहां दौड़े जा रहे हो, ऐसा क्या दिमाग के अंदर बैठ गया? हमारे त्योहार हैं, वी आर मुस्लिम, हमारे त्योहार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ईद हमारा त्योहार है, बकराईद हमारा त्योहार है, हम मनाते हमारे त्योहार, हज आता है, इतना प्यारा महीना आता है, हज के दिन आते हैं, मुसलमान मीना में जमा होते हैं, अरफात में जमा होते हैं, मुजदलिफा में जमा होते हैं, काबे के गेट लाखों लाख मुसलमान तवाफ कर रहे होते हैं, ये सब हमारे दिन है, हमारी रातें, हमारे मामलात हैं। बकराईद आती है, करोड़ों मुसलमान अल्लाह की राह में जानवर जबा करते हैं, गले मिलते हैं, मुबारकबाद देते हैं, ईद मुबारक करते हैं, खुशियां मनाते हैं, कपड़े सिलवाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, नहीं करते? और फिर ईदों की ईद आती है, मेरे आका की बारहवीं आती है, जश्न विलादत आती है, मरहबा या मुस्तफा के नारे लगते हैं, हम झंडे लगाते हैं, चरागा करते हैं, घर सजाते हैं, बिल्डिंगें सजाते हैं, अपने इदारे सजाते हैं, खुद को सजाते हैं। कितने ऐसे नौजवान हैं जो 12 रबी अव्वल को, 12वीं का महीना आता है, दाढ़ियां रख लेते हैं, इमामे बांध लेते हैं कि मेरे आका का तरीका। ये हमारे त्योहार हैं, ये हमारे दीन हैं, कम नहीं है, बहुत है। फिर आशिका ने रसूल का मदरी माहौल अगर मिला हुआ हो, सोबत मिली हो, तो मनाओ ना मेरे गोस्बा की 11वीं, मनाओ मेरे ख्वाजा की 6ठी, कभी दाता साहब का उर्स आएगा, तो कभी किस बुजुर्ग, कभी सखी साहब का उर्स आएगा, रहमहुल्लाह ताला, मराना। इतने त्योहार है, इतने दावत इस्लाम के त्योहारों में बेपर्दगी नहीं है, इस्लाम के त्योहारों में मौसीकी नहीं है, इस्लाम के त्योहारों में कोई बेशर्मी, बेहयाई, बेगैरती नहीं है, इस्लाम के त्योहारों में अल्लाह की मोहब्बत छुपी हुई है, रसूल पाक की मोहब्बत छुपी हुई है। जो भी इस्लाम और दीन के त्योहार मनाएगा वो अपने रब की रहमत के करीब जाएगा, रब की मोहब्बत के करीब जाएगा, वो मस्जिद में आता है। आप देखिए 15 शाबान बे नमाजी भी मस्जिद में आ जाता है, 12वीं शरीफ बे नमाजी भी मस्जिद में आ जाता है, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनता है, रोता है, तौबा करता है, इस्तिगफार करता है। इनके त्योहारों में शराबे, इनके त्योहारों में मौसीकियां हैं, इनके त्योहारों में बेपर्दगियां हैं और बहुत कुछ खराबियां हैं, नुकसान ही नुकसान है। और हमारे इदारों में इन्विटेशन के साथ मुसलमान जाएगा, ये बात हमारी समझ में नहीं आती यार, इतने पढ़े लिखे लोग बैठे हुए, लेकिन बस वही है कि दीन से दूरी है, इस्लाम से दूरी है, या कोई शायद प्रॉपरली बताने वाला नहीं आया, मगर दावत इस्लामी पीछे नहीं हटती। इंशाल्लाह सरकार की गुलामी दावत इस्लामी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और ये गुलामी रसूल का पैगाम देती रहेगी, इश्के रसूल का पैगाम देती रहेगी, और इंशाल्लाह देते देते ही अल्लाह ने चाहा तो ये अपनी मंजिल को पाती चली जाएगी। तो आप मतलब पाठ बने, जो मैंने अभी आपके सामने जो चीजें बयान की, ये सब क्या है? ये हमारे प्रॉब्लम्स हैं, हमारे इदारों के प्रॉब्लम्स हैं। मेरे पीर साहब अमीर सुन्नत की किताब कुफरिया कलीमात के बारे में सवाल जवाब, इसमें हमारे अकायद और नजरियात लिखे गए हैं। इसमें क्या लिखा गया है कि क्या करेंगे तो कुफर होगा, क्या लिखेंगे तो कुफर होगा। यूं समझे कि पूरी सवाल जवाब है, क्वेश्चन आंसर है, मगर एक पूरे पूरे फतवे हैं ये। इस पर उलमा की तस्दीक आते हैं, मुफ्तिया ने कराम इंडोर्स करते हैं इस किताब को, और मौजूदा हालात और वाकयात के मुताबिक। मैं आपको चलो एक एग्जांपल देता हूँ, स्टूडेंट है मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इसमें एक टॉपिक है गानों के जरिए जो कुफरिया बातें होती है, एक टॉपिक है इसमें, इतने सारे टॉपिक है, इसमें एक टॉपिक है गानों के जरिए कुफरियात। अब फॉर एग्जाम्पल मैं स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक शेर है गाने का जो उस किताब में लिखा हुआ है, तुझको दी सूरत परी सी दिल नहीं तुझको दिया, मिलता खुदा तो पूछता ये जुल्म तूने क्यों किया। अब पूरा माइंड जहन बनाकर मैंने आपको ये शेर सुनाया, आपके जहन आपके मुंह से माज़ अल्लाह निकलाना, मगर यही गाना नौजवान झूम झूम कर गाता होगा, उसको पता ही नहीं है कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर अल्लाह ताला को जालिम कहा गया, माज अल्लाह, अल्लाह जुल्म से पाक है, अपने ईमान की खैर मनाओ। मिलता खुदा तो पूछता ये जुल्म तूने क्यों किया, मिलता खुदा तो पूछता, ये सब चीजें क्या हैं? ये जहां का भी शेर है, जिसने भी लिखा होगा, मैं इस पर डिस्कस नहीं करता, मगर ये मुसलमान तेरी गैरत किधर चली गई, तेरे खुदा के लिए ये लफ्ज लिखा गया है। तू जिस खुदा पर ईमान लाया है, तेरी खुदा की शान, मतलब तेरी खुदा की शान में गुस्ताखी की गई है, तेरे रब की शान में गुस्ताखी की गई है, और तू इस शेर को गुनगुना रहा है। ऐसे वो है ना, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए, काहे को दुनिया बनाई, तू होता कौन अपने रब से सवाल करने वाला, तेरी औकात क्या है। ऐसे ना जाने कितने अशआर हैं उस किताब में लिखे हुए। अब हम माज अल्लाह अब हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज के अंदर फंक्शन, पहले फंक्शन बोलते थे, अब कॉन्सर्ट हो गए, उसमें लड़के लड़कियां नाचेंगी, उसमें ये सारे गुलूकार फनकार आएंगे और गवैये जमा हो जाएंगे और ये नाचेंगे कूदेंगे। भाई नाचने वाले पहले अच्छे लोग थे ही नहीं, पता नहीं कैसे वो अच्छे हो गए। लड़कियां नाच रही हैं, लड़के नाच रहे हैं, और अजीब माहौल बना हुआ, ये कैसी तालीम इदारे, मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये कैसी तालीम दी जा रही है, कैसे ये कैसे कौम के मेमार बनाए जा रहे हैं। अपने किरदार का जायजा लें, जो मैंने आपको अर्ज किया है इसके बारे में गौर करें। हमें कोई, मैं ये नहीं कहूंगा कि जनाब आप यूं कर दो यूं कर दो यूं कर, अपनी गैदरिंग बदल दो, अपना माहौल बदल दो, नेकी की दावत दो, अपने कॉलेज यूनिवर्सिटीज और स्कूल के अंदर जितने भी नौजवान आपके साथ पढ़ रहे हैं, इन्हें दावत ऐसा है कि मती माहौल में लाओ। आप, मैं आपको हल दे रहा हूं, हल तबलीग है, हर नेकी की दावत है, अमर बिल मारू नहीं अनिल मुनकर है, ये हल है, इसका सॉल्यूशन है। अगर ये गदर दरसे कुरान अगर हमने ना बुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। आज हमारे इदारों में बहुत बातें होती जनाब, कुरान की बात करो, कुरान की बात करो, कुरान का दर्स होना चाहिए, कुरानी का दर्स होना चाहिए, कुरान और हदीस की बात होनी चाहिए, लेकिन क्या कुरान और हदीस के अंदर तबलीग दीन नहीं है, नेकी की दावत नहीं है? करें नेकी की दावत, दें आप अपने हिस्से का काम करें। मेरे आका फरमाते बल्लिगो अन्नी ओइलो आया, पहुंचा दो मेरी तरफ से एक ही आया, तो आका की हदीस पहुंचाए, आका का इरशाद पहुंचाए। टीचर अपने अपने मकाम और मर्तबे के मुताबिक लेकर आप इज्तिमा में आए, मदनी माहौल में आए, मदनी काफिलों में सफर करें, खुद आपके यहाँ कुरान करीम की तालीम शुरू करें, आपके इदारों में मदरसतुल मदीना बालिगान शुरू करें। तकरीबन 2.5-3 साल की उम्र में हमारे यहाँ तालीमी सेशन शुरू होता है ना, प्री प्राइमरी और इस तरह का, 2.5-3 साल की उम्र में, 15-16 साल की उम्र में मैट्रिक होती है, उसके बाद तकरीबन 20-21 साल की उम्र में ये सेकेंड ईयर से फारिग होता है, छुट्टियां मुट्टियां भी आती हैं, ठीक है, और फिर अगर ग्रेजुएशन करनी है तो 25 साल का हो जाता है, यही है। अब ग्रेजुएशन में भी आजकल क्या मिलता है, धक्का। ग्रेजुएशन में क्या मिलता है, धक्का। वो बोलते क्या आता है, तो बोलता ठीक है मैं मास्टर करूंगा, फिर कितने साल, 4 साल, 5 साल, 4-5 साल जना मास्टर करता है, फिर एक हाथ में फाइल लेता है, बगल में तो आजकल दौर नहीं है, ब्रीफकेस लेनी पड़ेगी आपको, फिर एक अच्छा सा स्मार्ट बैग लेगा, उसके अंदर अपनी फाइलें डालेगा, अपनी सर्टिफिकेट डालेगा, मास्टर्स किया है, एक ऑफिस में जाएगा, पहले तो अखबार देखता रहेगा वैकेंसी किधर है, बोलेगा नौकरी है ही नहीं यार, क्या पढ़ा, पहले खुद को हजार दफा बुरा बोलेगा, हमारी आज बात मानी तो थी नहीं, ठीक है 25-30 साल इसी में गुजार दिए इसने, अब फाइल लेकर जाएगा, अच्छा माँ बाप बोलते शादी कर ले, कहाँ से करूँ, नौकरी नहीं है, मंगनी की थी तो शादी नहीं करनी है, वक्त जवानी गुजरती जा रही है, रोजगार मिल नहीं रहा है, नौकरियां है ही नहीं। बोला महंगाई बहुत बढ़ गई है, फैक्ट्रियां लग नहीं रही हैं, ऑफिस खुल नहीं रहे हैं, कोई जॉब दे नहीं रहा है। ईमानदारी और दयानदारी थी नहीं कि कोई मुझे पैसा देता कि जनाब कारोबार कर लो, कोई बिजनेस कर लो, कोई ठेला लगा लो, कोई छोटी मोटी दुकान खोलो। ना, मैंने 25 साल 30 साल ग्रेजुएशन मास्टर इसलिए किया था कि मैं ये छोटी मोटी दुकान खोलूंगा, मैं करूंगा। नहीं, मैंने तो बहुत बड़ी जॉब चाहिए। अच्छा, जॉब कितनी चाहिए? 1.5 लाख की चाहिए, 2 लाख की चाहिए, 3 लाख की चाहिए। और ये जॉबें 2.5-3 लाख की जॉबें किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी में 2 या 3 ही होती हैं। ये 15,000 और 20,000 वाले होते हैं ना, ये 5-5 सौ हजार का 2-2 हजार होते हैं। 2.5-3-4 लाख वाले जो है ना, ये 2-4 ही होते कंपनियों के अंदर, जिसको सीईओ कहते हैं, कोई बड़ा मैनेजर होता है वगैरह वगैरह। अब उसको चाहिए ये जॉब। अब इतनी मास्टर और सब क्या हुआ, जब फाइल खोलेगा, इंटरव्यू देगा, वो इंटरव्यू लेने बोलेंगे, वेल डन, बहुत अच्छे मार्क्स है आपको, वाह क्या अच्छी सर्टिफिकेट है यू एनी एक्सपीरियंस? आपके पास एक ही जवाब होगा, आई हैव नो एक्सपीरियंस। मैं सिर्फ जॉब मिलेगी तो सर एक्सपीरियंस आएगा ना, सॉरी यू आर वेल हैंडसम पर्सन, योर मार्क्स एक्सीलेंट, बट वी नीड एक्सपीरियंस पर्सन, सॉरी हाँ, प्लीज नेक्स्ट टाइम आपको तजर्बा हो जाए तो आइएगा। आप ऐसा मुंह लेकर बाहर निकलोगे और उस वक्त ना चाय अच्छी लगेगी, ना पानी अच्छा लगे, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा। और ये बताएं कि ये एग्जाम्पल लाखों की तादाद में है या नहीं है? अभी है, अभी है, आप इसी रास्ते पर जा रहे हो। आप समझते हो मेरे साथ कुछ अलग ही होगा, क्यों कर रहे हैं ऐसा? आओ यार इबादत कर। चोर फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। इबादत अल्लाह और उसके रसूल के लिए जिए। मैं दोबारा अर्ज कर देता हूं, जॉब सबको नहीं मिलेगी। ये आप कहीं पर लिख लो या लोहे दिल पर लिख लें, जॉब सबको नहीं मिलेगी, पॉसिबल नहीं है। वर्ल्ड वाइड में बात कर रहा हूं, सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा, जॉब नहीं मिलेगी। पढ़ा लिखा आदमी जाकर आके खेतों में अनाज उगाएगा, फल तोड़ेगा, कीनू तोड़ेगा, आम तोड़ेगा और सोचेगा काश कि मैं ये नाच गया होता। लेकिन जॉब सबको मिल नहीं सकती, थोड़ी सी अक्ल से काम ले, नहीं मिल सकती जॉब। इस वक्त लाखों करोड़ों नहीं पढ़ रहे, मगर करोड़ों पढ़ भी तो रहे, क्रेज है। और बड़ा बिजनेस है इस फील्ड के अंदर, एजुकेशन बड़ा बिजनेस है, लोग खोल रहे हैं क्योंकि लोग फीसें दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बड़ा जबरदस्त बिजनेस है ये, इसमें इन्वेस्टमेंट कर रही है, लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, 15-15, 20-20 हजार, 50-50 हजार रुपए महीना खर्च कर रहे हैं और दे रहे हैं। जॉब नहीं मिलेगी सबको, ये याद रख लीजिएगा, मैं जनरल बात कर रहा हूं। तो आप बोलेगा फिर क्या, आपको अपना काम करना पड़ेगा, ये याद रखिए। आपको अपनी कोई अपना कोई छोटा मोटा काम कल शुरू करना पड़ेगा और इसके लिए आप मेंटली जो तैयार रहे। ये आप, मैं खाली आप आए, आपके फेवर की भी बात कर रहा हूं। और आप बोलोगे मैं चलो काम करने के लिए इमरान तैयार हूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, यही बोलोगे ना? काम 10-15-20 लाख रुपए तो चाहिए, नहीं चाहिए है? पैसे नहीं है, क्योंकि जो पैसे थे ना, बाप ने कर्जा ले लेकर पढ़ा दिया, जमीन थी वो भी बेच दी, घर था वो भी बेच दिया। अब माँ भी बेचारी मुंह देख रही है, बाप भी मुंह देख रहा है, मंगनी हुई है वो इंतजार कर रही है, ससुराल वाले कह रहे करना है करो वरना कहीं और कर देते भाई। तो अब जॉब तो आपको मिल नहीं रही है नॉर्मली, ये मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, आपको अपना काम करना पड़ेगा, ये मैं आपको बता दूँ। आप बोलोगे काम के लिए पैसा चाहिए, मैं आपको पैसा मिलेगा, मैं आपको पैसे की भी रास्ता बता दूँ। पैसा मिलने के लिए 3 चीजें आप में होनी बहुत जरूरी है, 3 चीजें होंगी इंशाल्लाह आपको पैसा मिलेगा। नंबर 1 मेहनत, नंबर 2 ईमानदारी, नंबर 3 दयानतदारी। ये 3 चीजें अगर आप में हुई तो लाखों लाख लोग वो हैं जिनके पास पैसा इतना है कि संभलता नहीं है, इनके पास मैन पावर नहीं है। ये ढूंढ रहे वो लोग, वो नौजवान के जो ईमानदार हों, क्योंकि एक शख्स पैसा कमाता है ना, उसको बादों का औलाद से ज्यादा पैसा प्यारा होता है। ये उठाकर आपके मेरे हाथ में नहीं दे देगा। मैं एक मीटिंग में बैठा हुआ था, एक ऐसे आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूं, एक मीटिंग में बैठा हुआ था, एक बेरोजगार नौजवान था और एक मालदार शख्स था। उसने कहा ठीक है मैं तुम पर इन्वेस्टमेंट करता हूं, फला जगह इतने इतने रुपये, वो 30-40-50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी। उसने कहा मेरी 2 शर्तें, शर्तें क्या थी, मतलब 2 इसने अपनी बातें की, बस शटर उठाओगे तुम, शटर गिराओगे तुम, बस। वो व्यापारी आदमी था, तो पता है कि अगर ये शटर उठाएगा शटर गिराएगा तो पूरा दिन दुकान पर टाइम देगा तो दो पैसे कमाएगा, लेकिन अगर मैंने उसको पैसे दिए थे तो 12-1 बजे दुकान पर जाएगा, भाग जाएगा, काम करेगा नहीं, नौकर के हवाले दुकान कर देगा तो मेरे सारे पैसे खराब हो जाएंगे। उसने मानने से इनकार कर देगा, ये कंडीशन मैं नहीं कबूल करूंगा। बोला ठीक है, पैसे भी नहीं देता। इसलिए मैंने पहला लव का मेहनत, हट धर्मी वाले को कभी इन्वेस्टमेंट नहीं मिला करता। अक्लमंद आदमी हट धर्म आदमी पर कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। वो भले लाख बोलता रहे कि जनाब मुझे कुछ दोगे तो मैं बनूंगा, नहीं आप बनोगे तो कुछ देगा आपको। मेहनत, आपकी मेहनत देखकर आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगा। मुंह देखकर भीख मिलती है, भिखारी मुंह बनाता है, हम लोग मुंह क्यों बनाएंगे? खुददारी के साथ जिए तो आपको मिलेगी इन्वेस्टमेंट। छोटी छोटी कंपनियां खुलेंगी, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज लगेंगे, छोटे छोटे काम खुलेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। मगर उसके लिए आपका मेहनती होना, ईमानदार होना, दयानदार होना जरूरी है। और ये तीनों काम के लिए आपको दावत इस्लामी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये उमूमन इदारों में ये चीजें नहीं मिला करती। ये तो आशिका ने रसूल की सोहबत में दयानतदारी, ईमानदारी मिलेगी और एहसास जिम्मेदारी मिलेगी दावत इस्लामी में इंशाल्लाह। मुझे तजर्बा है कि लोग दावत इस्लामी वालों पर पैसा लगाते हैं, लोग दावत इस्लामी वालों को कैशियर बना दे, लोग दावत इस्लामी वालों को अपना पैसा हवाले कर देते हैं। एक इमेज बना हुआ दावत इस्लामी का, क्या ये आदमी ईमानदार होगा? निकले ये जरूरी नहीं है। अब इस इमेज की वजह से कई लोग दावत इस्लामी में यूं आ जाते हैं कि लोग धोखा खा जाते हैं। वो असल दावत इस्लामी वाला होता नहीं है, उसने दावत इस्लामी का गेटअप ले लिया ताकि लोग भरोसा करें और वो लोगों को धोखा देता है। वरना वाकई जिसके ऊपर मुर्शिद का फैज होगा वो कैसे ये काम करेगा यार? ये वो फेज है जो फ्यूज नहीं होता। अल्लाह का शुक्र है ये वली औलिया कराम का फेज होता है, औलिया कराम का फेज फ्यूज नहीं होता। अल्लाह हम सबको इबादत करने वाला बनाए। तो मैंने बहुत सारी चीजें आपके सामने रख दी हैं, आपके फ्यूचर के हवाले से बात की, आपकी तरबियत के हवाले से, तालीम के हवाले से, इबादत और नेकी के हवाले से, जो हमारे इदारों के अंदर जो गैर अखलाकी गैर शरई मामलात हो रहे हैं उसके हवाले से आपसे बात की, और जिस सारी जो बयान किया, मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करता हूं कि आप सिर्फ सुनकर ना जाएं, आप हमारे साथ मिलकर इस तरह की चेंजेस लाने में हमारा साथ दें। महज बयान सुनकर आप जाएंगे जनाब बहुत अच्छा माशाल्लाह हुआ, पहली बार सुना, ठीक है आपके जज्बात सत करो मरहबा, बट वी नीड चेंज, वी नीड यू। चेंज चाहिए और आप चाहिए, हमारे इस्लामी भाई जो आपके इदारों में है, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, इनका साथ दे। आपको दावत इस्लामी शायद ऐसा बना दे, शायद कि आप इमामत करने के अहल बन जाओ। उसका एक फायदा ये होगा कि इंशाल्लाह बेरोजगार नहीं रहोगे। हो सकता है आप बोलोगे यार इतना पढ़ा लिखा आदमी हूं इमाम, तो इमाम पढ़ा लिखा नहीं हो सकता। और जब आप जैसा पढ़ा लिखा आदमी मिंबर और मेहराब पर बैठेगा, आप लोग खुद कहते हो जनाब मिंबर और मेहराब पर ये होना चाहिए, तो बयानात ये होने चाहिए, इमाम को ये होना चाहिए। आप इमाम बनो, हम बनाते हैं आपको, इमाम भी बनाएंगे, आपको मस्जिद भी देंगे, आपको तनख्वाह भी देंगे, बस आओ आप। खाली बातें करेंगे, खाली बातें करेंगे, सूदी इदारे में नौकरी मिलेगी तो फौरन भागेंगे, मस्जिद की जॉब मिलेगी तो नहीं नहीं मस्जिद इमाम नहीं बनूंगा, क्यों? इमाम में क्या है? इमाम में क्या है? तनख्वाह का मैं मानता हूं, तनख्वाह का मैं, सवाब पर तो नजर रखो, इमाम का सवाब कितना है? इमाम को अल्लाह तबारक व ताला नवाजता कितना है? इमाम और मौजिन के लिए कितना सवाब लिखा गया? आप बने इमाम बन जाए। कितने ऐसे हमारे इस्लामी भाई मुझे नजर आ रहे हैं दावत इस्लामी के मदरी माहौल वाले, आप इमाम बन जाएं। कई जिम्मेदार नजर आते हैं, आप इमाम बन जाएं, इमामत करें। इमामत में क्या रखें? इमामत से क्यों भाग रहे हैं आप? दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह इमामत कोर्स कराती है और आपको अल्लाह ने चाहा तो जबरदस्त सवाब मिलेगा और आपको इल्मे दीन सीखने को मिला, आपको वुजू गुसल फैजान नमाज कोर्स कर लें, 7 दिन का। कितने दिन का? 7 दिन का। भाई इमामत कोर्स बाद की बात है, चलो फैजान नमाज कोर्स कर लो, अपनी नमाज तो दुरुस्त कर लें। नमाज कोर्स करें, कुछ बने और अल्लाह ताला की बारगाह से ठीक ठाक सवाब हासिल करें। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात जन्नत में आपने मोतियों से बने हुए गुंबद नुमा खेमे मुलाहिजा फरमाए, जिनकी मिट्टी मुश्क की थी। कैसे खेमे? मोतियों से बने गुंबद नुमा खेमे मेरे आका ने देखे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनकी मिट्टी किसकी थी? मुश्क की मिट्टी थी। प्यारे आका ने जिब्रील अमीन से इशाद फरमाया ये किसके लिए है? अर्ज की कि ये
मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के इमाम और मोजिनीन के लिए। थोड़ी देर समझिए, आज हमारे इमाम और मोजिन का घर कैसा है, इसे देखकर आप शायद इमाम और मोजिन ना बने, यार इसमें कौन रहेगा। और कल इन मोजिन और इमाम को जो कयामत जन्नत में जो घर मिलेगा, उसे देखकर शायद तमन्ना होगी कि काश के मैं भी इमाम होता। ये मैं अपने इमामों को तसल्ली दे रहा हूं कि अगर दुनिया में आपके लिए आसानियां नहीं है तो सब्र करो। जिस मकाम और मर्तबे पर आपको रब ने ना फाइज किया है ना, रब ने आपको जो मकाम मर्तबा दिया, उस रब की रहमत पर नजर रखो। एक दिन आप दुनिया से जाओगे, अल्लाह कबूल फरमा ले प्यारे हबीब के सदके में, तो आपको जन्नत में ऐसे महिलात ऐसे मकाम से खेमे मिलेंगे जिन्हें देखकर दुनिया का बहुत बड़ा मालदार और इज्जतदार कहलाने वाला आदमी भी शायद इमाम का जन्नत में ये मकाम देखकर रश करेगा, काश मैं भी दुनिया में कोई इमाम लगा होता। मानता हूं दुनिया में इमाम के लिए इतनी सहूलतें नहीं है, हमारे यहाँ खास तौर पर नहीं है, अरब दुनिया में है सहूलत। अरब दुनिया में मैंने इमामों के घर देखे हैं, वेल फर्निश्ड फ्लैट, वो मस्जिद के साथ प्राडो खड़ी है तो पजेरो खड़ी है तो बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हुई है, बड़ी बड़ी गाड़ियां मर्सिडीज खड़ी हुई है, बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हुई है वहां है। और लेकिन वो इमाम फिर वो इमाम इमाम है, उनकी किरात, उनकी इमामत, उनका मकाम भी ऐसा ही है। फिर उनकी मतलब सीवीज आती है दुनिया भर में, तो अल्लाह करे कि यहां भी ऐसा हो जाए। अगर हमारे मुल्क में भी अगर इमाम की गाड़ियां हो जाती हैं, हमारे मुल्क में अगर इमाम के अच्छे मकान बनते हैं, तो यार इसमें अच्छा या बुरा है? क्या डॉक्टर और चार्टर्ड अकाउंटेंट और टीचर और प्रोफेसर लेक्चरर ही के लिए ये सारी चीजें रह गई? अल्लाह और उसके रसूल के दीन की खिदमत करने वाले के लिए कुछ भी ना रहा? वो ईद के दिन जूते भी नहीं ले सकता, अपने बच्चों को नए कपड़े नहीं पहना सकता ईद के दिन, क्योंकि ये मस्जिद का इमाम है? ये हाल है। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए और हमारे गुनाह माफ फरमाए। तो है कोर्स कर लें, इमामत कोर्स कर लें, फैजान नमाज कोर्स कर लें 7 दिन का। इतना पढ़ने वाला वेल एजुकेटेड नौजवान को पूछो कि भाई कपड़े कैसे पाक होते हैं, ये तो आता नहीं है, सर ने सिखाया नहीं था। सर थोड़ी सिखाएंगे, सर को हम सिखाएंगे। ये मजहबी इमाम, सर को इंशाल्लाह हम सिखाएंगे। क्या आ रहा है हमारे पास? सर आए सीख कर चले गए, कितने सर आए जिन्होंने सर पकड़ लिया, अरे ये तो आता नहीं था। आपके निसाब में नहीं है ना कपड़ा पाक करने का तरीका, आपके निसाब में नहीं है गुसल करने का तरीका, आपके निसाब में नहीं है नमाज पढ़ने का तरीका। है आपके निसाब में? आपके निसाब में है कि ये जब मैट्रिक से या ग्रेजुएशन से फारिग होगा तो उसको देख कर कुरान पढ़ने आएगा? आपके निसाब में है? आप ग्रेजुएट हो गए, आपने मास्टर्स कर ली, मगर आपको देख कर कुरान पढ़ने नहीं आता, क्या किया? कुछ भी नहीं, बदकिस्मत। बल्कि ये तो बहुत बड़ी बदकिस्मती है। मगर आपके एजुकेशन के बाद को तो मदद के साथ इतना पढ़ने के बाद भी आप अपने लिए नौकरी की इंग्लिश में एप्लीकेशन में नहीं लिख पाते। हाथ में आया क्या? ना इधर गए ना उधर गए। तो ये दावत इस्लामी आपको सिखाएगी, कुरान दुरुस्त करना दावत इस्लामी सिखाएगी, नमाज दुरुस्त करना दावत इस्लामी सिखाएगी। हम आपको आप ही के माहौल में रखकर इंशाल्लाह जन्नत की तरफ चलने का रास्ता बताएंगे, फिर इंतखाब आपके हाथ में। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
मैं मुबल्लिग बनू सुन्नतों का खूब चर्चा